منتن. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मंथन, जहां हम सिर्फ खबर नहीं फैसलों के मायने तलाशते हैं। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक विशेष अध्याय बन गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री के नए आवास सेवा तीर्थ में आयोजित हुई, एक ऐसा स्थल जो केवल निवास नहीं बल्कि सेवा और संकल्प का प्रतीक बनकर उभरा है। यह अवसर इसलिए भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसी बैठक में लिए गए निर्णय आने वाले वर्षों की विकास यात्रा की दिशा भी तय करेंगे। रेलवे क्षेत्र में कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये सिर्फ नई पटरियां नहीं बल्कि देश के कोने कोने को जोड़ने वाली नई संभावनाओं की राह हैं। अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट्स के नए फेज को भी हरी झंडी मिली है, यानी शहरों की रफ्तार अब और तेज होगी, सफर होगा और सुगम। वहीं श्रीनगर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल को स्वीकृति दी गई है जो पर्यटन, व्यापार और कनेक्टिविटी के नए द्वार खोलेगा। कश्मीर की वादियों तक अब विकास की उड़ान और मजबूत होगी। और किसानों के लिए एक अहम फैसला भी लिया गया है, कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP निर्धारित की गई। ये सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि खेतों से मंडियों तक आत्मविश्वास की गूंज है। इन निर्णयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
शुरुआत यहीं से करते हैं। आज प्रधानमंत्री के नए आवास सेवा तीर्थ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
आज युगाप 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, फागुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन 24 फरवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ऐतिहासिक प्रथम बैठक आयोजित हो रही है। यह बैठक एवं यह भवन नए भारत के नव निर्माण की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। इस शुभारंभ के साथ ही हम उस भविष्य का स्वागत कर रहे हैं जिसके निर्माण में सदियों का श्रम लगा है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में इतने दशकों तक सरकारों ने विरासत को संभाला और भविष्य के सपने देखे। हमने एक ऐसे भारत के सपने देखे जिसकी सोच स्वदेशी हो, स्वरूप आधुनिक हो और सामर्थ्य अनंत हो। आज ये सेवा तीर्थ उसी संकल्पना का वह मूर्तिमान अवतार है जो लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत का गौरव बढ़ाएगा। आज इस अवसर पर इस स्थान के इतिहास को भी स्मरण कर रहे हैं। सेवा तीर्थ उन अस्थाई बैरकों के स्थान पर बना है जो ब्रिटिश काल के थे। उस स्थान पर राष्ट्र संचालन के सक्रिय संस्थान का निर्माण नए भारत के कायाकल्प का भी प्रतीक है। गुलामी के कालखंड से पहले भारत की पहचान एक ऐसे राष्ट्र के रूप में होती थी जो एक और अपनी भौतिक भव्यता के लिए भी जाना जाता था और दूसरी ओर अपने मानवीय मूल्यों के लिए। सेवा तीर्थ की संकल्पना इन दोनों ही आदर्शों से मिलकर बनी है। कर्तव्य, सेवा और समर्पण की त्रिवेणी से यह कार्यस्थल एक तीर्थ की भांति पवित्र हो, यह इसकी मूल भावना है। सेवा तीर्थ में हो रही इस पहली बैठक के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल यह संकल्प दोहराता है कि यहाँ लिया गया हर निर्णय 140 करोड़ देशवासियों के प्रति सेवा भाव से प्रेरित होगा और राष्ट्र निर्माण के व्यापक लक्ष्य से जुड़ा होगा।
शेखर जी, इस बैठक में कई निर्णय लिए गए। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जो दक्षिण भारतीय राज्य है केरल, उसका नाम बदलकर केरलम किया गया है, कैसे देखते हैं इसे आप?
ये बहुत दिनों से एक आवाज थी, एक मांग थी सरकार की भी और केरल के लोगों की भी कि केरला, जो अंग्रेजी में हम केरला कहते हैं, जो हिंदी में केरल बोलते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग यानी मलयाली लोग हमेशा उसको केरलम कहते हैं और मलयालम भाषा में भी केरलम लिखा जाता है। तो एक हमेशा एक डिमांड था कि ये नेम बदलना चाहिए क्योंकि ब्रिटिश काल के समय से केरला के नाम से उसका ये था। और इस कैबिनेट डिसीशन, आज का जो डिसीशन है, बहुत बड़ा फैसला है और बहुत समय से ये मांग, पहली मांग तो पिनराई विजयन के सरकार ने रखी थी और असेंबली में 2024 में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की थी असेंबली में, और उसके बाद ये रेजोल्यूशन ये फिर हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको स्टडी करके फिर अपने रिकमेंडेशन दिया है। हमारे जो संविधान में उसमें आर्टिकल 3 में ये प्रावधान है कि पार्लियामेंट किसी राज्य का नाम बदल सकता है, क्योंकि अभी क्या होगा जो कि एक प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के अनुसार एक बिल बनाया जाएगा, एक कानून की ड्राफ्ट बनाई जाएगी, जो ड्राफ्ट राष्ट्रपति जी केरल राज्य को भेजेंगे, फिर वो अपने विधानसभा में इस पास करके फिर यहाँ लाएंगे पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में आने के बाद ये पास हो जाएगा। और ये लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने, लॉ जस्टिस मिनिस्ट्री ने, सब ने इस प्रपोजल की मंजूरी दी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि नवंबर 1 तारीख माना जाता है कि केरल के राज्य गठित हुआ था। इससे पहले वो वहां पे राजबाड़ी थे, यानी प्रिंसली स्टेट से, ट्रावनकोर था, कोचीन था, फिर मलबार डिस्ट्रिक्ट जो था वो मद्रास स्टेट से जुड़ा हुआ था, और जब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद वो स्टेट ऑफ केरला बना, लेकिन वो ज्यादातर एक अंग्रेजी यूज के तौर पर देखा गया। और आज हमारी सरकार हमेशा चाहती है जो कॉलोनियल माइंडसेट जो बार बार प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसमें बदलाव करके जो नए इंडिया की, एक नए भारत की रिफ्लेक्ट करना चाहिए उस स्पिरिट को, उस हिसाब से आज की फैसला लिया गया है।
कई सारी रेल परियोजनाओं को भी आज स्वीकृति दी गई है, जिसमें जबलपुर गोंदिया का जो रेल लाइन है उसके दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। 5,236 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, 231 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। कैसे देखते हैं इसे आप शेखर जी, चूंकि इसमें वाराणसी, प्रयागराज से चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच की दूरी कम हो जाएगी, और ये भी कहा जा रहा है कि इस परियोजना के पूरे होने के बाद 16 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी, यानी 63 लाख पेड़ लगाने के बराबर होंगे।
ये दारे जहां लाइन जो डबलिंग हो रही है, ट्रैक्स के डबलिंग हो रही है, कई जगह ट्रबलिंग नहीं है, मतलब तीसरा लाइन चौथा लाइन भी लगाया जा रहा है, जैसे गोंडिया और जबुल के बारे में वो डबल होगा आज, मतलब अभी एक लाइन है, एक और एक लाइन बनाया जाएगा। वैसे दूसरी लाइन आप पुनौरक और केवल के बीच में एक तीसरी और चौथी लाइन बन रही है, गमारिया और चंडिल फिर तीसरी और चौथी, इस तरह 8 जिलों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस तरह की 300 किलोमीटर की जो अभी है इसकी इंक्रीज की जा रही है, इसीलिए इसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी कम से कम 5,000 गांवों जो अभी जिसमें कम से कम 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां इनके लिए और सुविधाएं बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो बार बार रेलवे चाहती कि ज्यादा माल और ज्यादा पैसेंजर कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, कंजेशन खत्म होगी, और ये जो प्रधानमंत्री की जो विजन है कि नए इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की सोच है, उस दिशा में ये करेगी। और इससे जो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जो कनेक्टिविटी जो बढ़ेगी, ये कनेक्टिविटी सारे ये ऐसी इलाके हैं जहां पर्यटकों की भी है, जैसे आपके जबलपुर के शिव मंदिर है, कान्हा नेशनल पार्क है, और गंगुल पारा डैम और वाटरफॉल है, ऐसे फिर पिंच नेशनल पार्क है, दुनंदर वाटरफॉल है, बरगी डैम है, चंडिल डैम है, दलमा डैम, ऐसे जगह हैं जहां टूरिस्ट अट्रैक्शन और बढ़ेगी जब रेल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इससे एडिशनल जो माल कैपेसिटी भी ज्यादा बढ़ेगी, कम से कम 52 मिलियन टन्स पर एनम जो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं एक चीज आनंद जी, हमारी सरकार जहां भी विकास की बात सोचती है उसपे एक होलसम डेवलपमेंट की सोचती है, क्योंकि अगर जंगल काटा जाएगा प्रोजेक्ट के लिए, उससे 10 गुना ज्यादा नए जंगल बनाने की एक कार्यक्रम है, मतलब पेड़ लगाने के कार्यक्रम। इस तरह ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक होलसम प्रोजेक्ट है, और इसमें टोटल खर्चा 9,000 करोड़ की है।
पुनरक से क्यूल के बीच तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है, जैसा शेखर जी बता रहे थे। ये 50 किलोमीटर लंबी लाइन होगी और इसमें 2,668 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, और इसे पटना और कोलकाता के बीच जो समय है यात्रा का वो छोटा हो जाएगा, कम समय लगेगा, सबसे प्रभावी मार्ग होगा, और इसमें पटना और लखीसराय दो जिले शामिल हो रहे हैं। गम्हरिया और चांदिल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन को मंजूरी दी गई है, ये 26 किलोमीटर लंबा मार्ग होगा और इसके लिए 1,168 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें झारखंड का सरायकेला खरसावां जिला शामिल हो रहा है, और हम आपको बता दें कि इस परियोजना से 6 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होने की उम्मीद है, और साथ ही साथ 18 लाख रोजगार कार्य दिवस भी सृजित होंगे। शेखर जी, आज के कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, और वो निर्णय है श्रीनगर एयरपोर्ट पर नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बनाने का निर्णय। 4 वर्ष में इस परियोजना के पूरे होने की उम्मीद है और 1,667 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इससे वहां के पर्यटन को बढ़ावा मिलने की कितनी उम्मीद है?
बिल्कुल, ये श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये जो बड़गाम एयरबेस है उससे जुड़ा हुआ है, मतलब सिविल सेक्शन है लेकिन वो एयरफोर्स का बेस है, इसलिए वहां पे कैपेसिटी बढ़ाने की बहुत आवश्यकता थी। लगातार आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं जिस तरह टूरिज्म की बढ़त हुई है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि एयरपोर्ट जो श्रीनगर एंट्री पॉइंट है कश्मीर घाटी के लिए, तो एंट्री पॉइंट में और सुविधाएं बढ़े। और ये एयरपोर्ट अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के है। श्रीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दर्जा दी गई थी 2005 में और श्रीनगर शहर से ये 12 किलोमीटर दूर पे है। ये जो अभी जो बनेगी कम से कम 70 से ऊपर एकर्स में बनेगी, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल, आज आप कहीं शहर चले जाइए एयरपोर्ट की बहुत बदल रहा है, एयरपोर्ट की सुविधाएं बदल रही है, टेक्नोलॉजी की बदल रही है, इसमें बहुत कुछ चीजें बढ़ रही है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कम से कम ये सोच रहे हैं कि पीक आवर्स में 3000 पर्यटकों की पैसेंजर्स को हैंडल करने की कैपेसिटी देख रहे हैं और साल में कम से कम 1 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने की कैपेसिटी होगी और एक ही टाइम पे 15 एयरक्राफ्ट वहां पे पार्क हो सकते हैं। और इसमें देखिए उसमें कार फैसिलिटीज होगी कम से कम 1000 गाड़ियों की, मतलब श्रीनगर शहर में एक पार्किंग फैसिलिटी आएगी जहां 1000 गाड़ियां आप पार्क कर सकते हैं, कई लोगों की कल्पना से बाहर है क्योंकि श्रीनगर इतना बड़ा कभी डेवलपमेंट देखा नहीं है। लेकिन जो सोच है मोदी सरकार की कि आज की रिक्वायरमेंट ज्यादा आगे 10 साल में जब पूरी कैपेसिटी टूरिज्म बढ़ेगी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें बढ़ेगी और कश्मीर में इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बढ़ जाएगी तब जितनी इन्फ्लक्स होगी एयरपोर्ट पे जो प्रेशर बढ़ेगा उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आज से सोचना है। और दूसरी बात, जो कैबिनेट के फैसले में जो एयरपोर्ट बनेगी अंदर तो मॉडर्न रहेगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी रहेगी, लेकिन कश्मीर की जो विरासत है, कश्मीर की जैसे वुडवर्क है और क्राफ्ट्समैनशिप है, ये सारे उस एयरपोर्ट में होगी। और ये ऐसी आप कल्पना आप देख रहे हैं कई एयरपोर्ट में हो रहे हैं, कहीं भी चले जाइए, गोवा एयरपोर्ट जाइए या कोयम्बतूर जाइए, जहां जहां नया एयरपोर्ट है उस राज्य का पूरा जो विरासत है, रिच हेरिटेज है, कल्चर है, वो रिफ्लेक्ट होता है। यहां भी वही होगा, वुडवर्क होगा वहां पे और लाउंजेस होंगे, साथ में सुरक्षा के लिए भी बड़ी व्यवस्था की जा रही है।
जी बिल्कुल, किसानों को लेकर भी एक अहम निर्णय किया गया है आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में और जो रॉ जूट है उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित किए गए हैं। TD3 ग्रेड का जो रॉ जूट है उसके लिए 5,925 रुपए पर क्विंटल का दाम निर्धारित किया गया है। कैसे देखते हैं शिखर जी, जब भारत जूट के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है,
ये जो फैसला है MSP को बढ़ाने की, ये सरकार की एक प्रिंसिपल अप्रोच है कि MSP का लेवल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 1.5 गुना ज्यादा रखनी चाहिए। ये बात बजट में 2018-19 पे की गई थी, ये घोषणा। उसके अनुसार आज जो कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स जिसकी मीटिंग हुई थी उन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो रेट फिक्स कर रहे हैं ये 61% ज्यादा है, मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी है उसकी 61% ज्यादा है। तो इसका मतलब जो MSP 1.5 गुना ज्यादा होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, वो प्रिंसिपल से ये जुड़ा हुआ है। और सरकार चाहती है कि इससे जो किसान है, जो जूट किसान है खास करके पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, तो इन लोगों के लिए ज्यादा फायदा होगा ये। और इसके पूरा सपोर्ट ऑपरेशन, जो प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन, ये जो सरकारी सेंट्रल नोडल एजेंसी है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो करेंगे और जो भी अगर कोई नुकसान होती है इनको जूट कॉरपोरेशन को, वो केंद्र सरकार उसकी फुली रिएम्बर्स करेगी।
शिखर जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
धन्यवाद।
तो श्रोताओं, सेवा तीर्थ से निकले ये फैसले केवल कागजों पर दर्ज निर्णय नहीं है बल्कि विकास, विश्वास और भविष्य का संकल्प है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR Official पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
मंथन।